करोति वाचालं भंगुं लंघयते चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद कृष्णा। तो आप में से कितने भक्त पिछली बार आए थे चैतन्य चरित अमृत क्लास के लिए? ये ऐसा पूछना ठीक रहेगा, कितने भक्त नहीं आए थे? अच्छा, क्योंकि पिछले दो बार ये चर्चा हुई थी कि चैतन्य चरितामृत क्या है, कैसे इसकी रचना की गई, इस ग्रंथ का महत्व क्या है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किस परिस्थिति में इस ग्रंथ की रचना की, क्यों लिखी गई ये किताब, इन सारी चीजों का वर्णन पिछले दो प्रवचनों में हो चुका है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा कुछ दोहराना आवश्यक रहेगा, क्योंकि आप में से कई भक्त अभी पहली बार आ रहे हैं। तो यहां जो ऊपर चार्ट लगा हुआ है, इसमें प्राय पिछले दो प्रवचनों का सार है। कई चीजें इसमें नहीं है, परंतु फिर भी काफी कुछ इसमें आ जाता है। बाद में आप में से जो चाहें उसको लिख के ले सकते हैं। ये जो क्लास है, जो दो बार हफ्ते में चैतन्य चरितामृत के ऊपर होगा, वो उन भक्तों के लिए है जो बड़े गंभीरता से और गहराई में चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। तो हो सकता है आपको कुछ लिखना भी हो, घर में अपने आश्रम में जाके पढ़ना भी हो, तो अगर आप चाहें तो आप किताब और कलम भी लेकर आ सकते हैं कुछ लिखने के लिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन के अलग अलग मंदिर जो हैं वो विद्यालय हों या विश्वविद्यालय हों, जिसमें सारे भक्त अच्छी तरह से उनके ग्रंथों को पढ़ सकें, सुन सकें और समझ सकें और फिर अपने जीवन में अमल कर सकें। तो चैतन्य चरितामृत, जैसा कि इस पुस्तक का शीर्षक ही बताता है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और उपदेशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विभाजन कविराज गोस्वामी ने दो भागों में किया है। एक है आदि लीला, महाप्रभु के आविर्भाव से लेकर उनके संन्यास लेने तक। संन्यास महाप्रभु ने ली 24 साल की आयु में, और उसके बाद में जो 24 साल रहे संन्यास के बाद उनके तिरुभाव तक, उन्हें शेष लीलाएं कहते हैं। तो आदि लीला और शेष लीला कुल मिलाकर 48 साल महाप्रभु की प्रकट लीला हुई। हम प्रकट लीला क्यों कहते हैं, ऐसे ही लीला क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान की लीला हमेशा होती रहती है, शाश्वत रूप से विद्यमान है। भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित मात्र करते हैं जन साधारण के नेत्रों के लिए थोड़े समय के लिए। जैसे इस बार वो यहां प्रकट हुए भौम नवद्वीप में, वो नवद्वीप धाम जो कि इस भूमि पर प्रकट हुआ, और यहां पे थोड़े समय के लिए उन्होंने अपनी शाश्वत लीलाओं को प्रकट कराया। तो भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक है प्रकट लीला और दूसरी है अप्रकट लीला। अप्रकट लीला तो भगवान के धाम में अनादिकाल से शाश्वत रूप से चल रहा है और चलेगा। केवल वही भगवान का धाम जब इस धरातल पर भगवान प्रकट कराते हैं और उन्हीं लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं सबके लिए, तब उन लीलाओं को प्रकट लीला कहते हैं। अंतर दोनों में केवल इतना है कि यहां पर प्रकट लीला में सभी लोग उन लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं, परंतु अप्रकट लीला केवल वही भाग्यवान जीव दर्शन कर सकते हैं जिनके दिव्य चक्षु हैं। जैसे जब महाप्रभु रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के सामने अपने भक्तों के संग में नृत्य और कीर्तन किया करते थे, तो ये प्रकट लीला है। हजारों की संख्या में जितने भी भक्त वहां आए थे, तीर्थयात्री भी आए थे, सब ने भगवान का दर्शन किया इस रूप में। परंतु जब महाप्रभु का तिरुभाव हो गया, उसके बाद वहां जो भी लोग जगन्नाथपुरी में आए, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से साक्षात भगवान का दर्शन इस प्रकार से नहीं किया। हालांकि महाप्रभु की अप्रकट लीलाएं तो चल रही हैं आज भी, परंतु प्रकट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए यहां पर हमने प्रकट शब्द का उपयोग किया है। तो महाप्रभु के प्रकट लीलाएं 48 साल तक रही और उनके दो भाग हैं, आदि लीला और शेष लीला। उधर शेष लीला के भी दो भाग बताए जाते हैं, एक है मध्य लीला और दूसरा अंत्य लीला। तो यहां पर हम बता चुके हैं, बाद में आप लिख सकते हैं। अभी आप बताए, विशेष करके आप में से जो भक्त पिछले दो प्रवचनों में आए थे, ये ग्रंथ की रचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की, लेकिन कविराज गोस्वामी को भगवान की इन लीलाओं की जानकारी कैसे हुई, कहां से मिली उनको, बताएंगे आप में से कोई? हाँ, राधा रानी से, रघुनाथ दास गोस्वामी से। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किया, कहां पे? राधा कुंड में। जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन शाम को 3 घंटे चैतन्य लीला के ऊपर प्रवचन दिया करते थे, तो उस समय कविराज गोस्वामी वहां जाया करते थे और उनके वो प्रमुख शिक्षा गुरु रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। वहां से उन्होंने श्रवण किया। साथ साथ रघुनाथ दास गोस्वामी ने जानकारी महाप्रभु की लीलाओं के बारे में कहां से प्राप्त की? पहले तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कड़चाओं से। कड़चा मतलब जो वो सूत्र लिखा करते थे, अपने डायरी में लिखा करते थे। जैसे कि आपको पता है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकट के पार्षद थे। महाप्रभु के जगन्नाथपुरी की लीलाओं में सदैव 24 घंटे महाप्रभु के साथ में रहा करते थे। और अंत लीला कोई इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था जितना कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बहुत ही सावधानी से महाप्रभु की इन लीलाओं का वर्णन लिखा और उन्होंने फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को ये कंठस्थ कराया। जितने भी श्लोक उन्होंने लिखे थे, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा इनको कंठस्थ कराकर आगे इसका प्रचार करने की व्यवस्था कर दी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं भी महाप्रभु की अंत्य लीलाओं का दर्शन किया था, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी भी पुरी में रहा करते थे, कई साल रहे वो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताया। तो विशेष करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु की शेष लीलाओं का वर्णन किया है संन्यास लेने के बाद। इसलिए चैतन्य चरितामृत विशेष करके महाप्रभु के शेष लीलाओं के ऊपर आधारित है। महाप्रभु के शेष लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार में किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, परंतु महाप्रभु के आदि लीलाओं का वर्णन कविराज गोस्वामी ने इतने विस्तार में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है बताइए? हाँ बताइए। हाँ, क्योंकि पहले ही वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में इन आदि लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार में कर चुके थे। तो कर चुके थे तो फिर दोहराने में क्या समस्या थी? क्यों नहीं दोहराया कविराज गोस्वामी ने?
कविराज गोस्वामी अमृत है,
कविराज गोस्वामी नम्र थे और उन्होंने सोचा कि जो पूर्वज आचार्यों ने, जो मेरे से वरिष्ठ हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने, जब इन्होंने इतने विस्तार में आदि लीला का वर्णन किया है और इन्हीं लीलाओं का वर्णन मैं भी विस्तार में करने जाऊं तो मेरे मुझसे ये मर्यादा व्यतिक्रमण का दोष हो जाएगा, मतलब मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा और ये मेरे प्रति एक अपराध हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं वृंदावन दास ठाकुर की रचना के ऊपर कुछ सुधार कर सकूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो चैतन्य भागवत में आदि लीलाओं का वर्णन है, इनके बारे में कविराज गोस्वामी ने केवल संक्षेप में यहां चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, विस्तार में नहीं। फिर शेष लीलाओं का वर्णन क्यों किया विस्तार में? क्योंकि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इन लीलाओं को वर्णन विस्तार में नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे बताइए? तो पहली बात यह है कि चैतन्य भागवत में जब वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु के अंत लीलाओं तक पहुंचे तब तक किताब काफी बड़ा हो गया था, तो उनको ये डर था कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो कष्ट हो जाएगा, कोई पढ़ने में कठिनाई हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपना वर्णन जो है वहीं पर समाप्त कर दिया। ये एक कारण है। दूसरा कारण, दूसरी बात यह है कि नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने में लग गए। जब वो अंत लीला तक पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु की लीला का वर्णन करते करते उसमें इतने बह गए, भाव विभोर हो गए कि नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते 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 बहुत लंबे चले गए आगे, और फिर देखा कि अभी काफी आगे बढ़ गए हैं और ग्रंथ बड़ा हो गया है, इसलिए आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिन लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया है उन लीलाओं का वर्णन मात्र मैं कर रहा हूं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इन्होंने तो केवल शेष लीलाओं का वर्णन किया है अपने कड़छाओं में, परंतु आदि लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर को कहां से पता चला? बताइए। मुरारी गुप्त ने लिखे हुए थे उनके कड़छाओं से, तो उनके निकट से जो सबसे उनके सहपाठी मित्र थे, सहपाठी थे बचपन से ही मुरारी गुप्त, तो उन्होंने महाप्रभु के सारे समस्त लीलाओं का वर्णन नवद्वीप में जो हुई संन्यास के पहले उनका विस्तार में वर्णन किया है। उनके ग्रंथ का नाम है चैतन्य चरित महावाक्य। तो उन्होंने लिखा, तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपना चैतन्य भागवत जो है मुरारी गुप्त के कड़छाओं के ऊपर आधारित किया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने चैतन्य चरितामृत जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कड़छाओं पर आधारित किया, जो कि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से सुना। तो इसलिए यहां पर कोई पढ़ेंगे यहां क्या लिखा है सबके लिए? पहली बात, ऊपर लिखा है चैतन्य चरितामृत की प्रकट लीला, चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला, कुल मिलाकर 48 वर्ष। फिर वहां आगे क्या लिखा है नीचे? आदि लीला, आगे पढ़िए, जन्म से संन्यास तक, अर्थात जन्म से 24 वर्ष की आयु तक, मुख्यतः भगवान की गृहस्थ लीला। और नीचे क्या लिखा है? मुरारी गुप्त द्वारा संकलित, क्योंकि मुरारी गुप्त के कड़छाओं पर ये आधारित है। और नीचे पढ़िएगा,
वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विस्तार से चैतन्य महाप्रभु के वर्णित भागवत में वर्णित, अतः चैतन्य चरितामृत से
मैं क्योंकि चैतन्य भागवत में विस्तार से वर्णन है आदि लीला का, इसलिए चैतन्य चरितामृत में संक्षिप्त रूप में मात्र वर्णन है। और आगे फिर शेष लीला, शेष लीला के कितने भाग हैं?
संन्यास से अप्रकट होने तक 48 वर्ष, पहला संन्यास जीवन, दूसरा स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा संकलित, तीसरा चैतन्य भागवत में संक्षेप में अथवा नगण्य वर्णन, चौथा अथ चैतन्य जनकामृत में से विस्तार से वर्णन।
क्योंकि चैतन्य भागवत में या तो बहुत ही कम वर्णन हुआ होगा संक्षिप्त रूप में उन लीलाओं का वर्णन, या तो वृंदावन दास ठाकुर ने बिल्कुल वर्णन नहीं किया होगा, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार से किया हुआ है। और फिर ये शेष लीला के कौन से दो भागों का वर्णन है बताइए?
दो भाग, एक मध्य लीला 6 वर्ष की, दूसरी अंत लीला 18 वर्ष। मध्य लीला में भाग दिए हैं भगवान का संपूर्ण भारत भ्रमण, दूसरा पूरी रथ यात्रा में लीलाएं, इधर जो अंत लीला है।
एक मिनट, फिर यहाँ रुक जाते हैं मध्य लीला में। तो ये संन्यास देने के बाद महाप्रभु ने कहाँ संन्यास लिया, कौन से शहर में, गांव में? काटवा। फिर वैसे तो कहाँ जाना चाहते थे महाप्रभु?
वृंदावन।
फिर क्यों नहीं गए? नहीं, सची माता क्या चाहती थी सची माता? कि वो पास में रहें। और उन्होंने कहा कि यहाँ भी जगन्नाथ है, ये भी तो कृष्ण है भगवान, तो पूरी भी वृंदावन से अभिन्न है, तो यहाँ पे पास में रहो तो आना जाना हो पाएगा। तो महाप्रभु ने फिर अपनी माँ की बात को स्वीकार किया। तो शची माता के इच्छानुसार महाप्रभु वृंदावन न जाकर पुरी में रहना शुरू कर दिए। परंतु जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचे और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कर दिया, फिर उन्होंने सोचा कि मैं सन्यासी हूं, मुझे भ्रमण करना चाहिए। तो सारे भारतवर्ष का भ्रमण उन्होंने आरंभ किया। कहां गए वो?
दक्षिण
भारत में गए। दक्षिण भारत में पहले तो आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, फिर केरल और फिर उडुपी गोकर्ण होते हुए महाराष्ट्र में पंढरपुर तक पहुंचे, और पंढरपुर से फिर लौट के जगन्नाथपुरी आए। और इसके बाद फिर वो वृंदावन जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। पहली बार जब वो गए, पहले तो जाते जाते भक्त उनको रोकते थे, फिर एक बार जब आगे गए तो केवल रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा बरसाने के लिए गए, वो वृंदावन नहीं जा पाए। कहां तक गए? कनाई नटशाला, और उसके पहले रामकेली नाम के गांव में उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा की। पहली बार रूप और सनातन गोस्वामियों ने महाप्रभु का दर्शन किया और उन्होंने ठान लिया कि अब हमें सब कुछ त्याग कर महाप्रभु के शरण में जाना उचित है। फिर महाप्रभु लौट के चले आए। तो इस प्रकार से महाप्रभु अंत में सफल हुए वृंदावन जाने में। और उस समय जाते जाते वाराणसी प्रयाग जाकर फिर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन से लौटते हुए भी इन जगहों पे आए, फिर बंगाल से होते हुए वापस चले आए, झारखंड में भी गए। तो इन सारे लीलाओं का वर्णन मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में पाया जाता है। जब वो बनारस में गए, जो कि मायावादियों की राजधानी मानी जाती है, तो वहां उन्होंने प्रकाश आनंद सरस्वती नामक एक सन्यासी को वैष्णव बनाया, और उनके साथ में जितने भी हजारों की संख्या में सन्यासी थे जो ज्ञान मार्ग के अनुयायी थे, तो उनको भी उन्होंने वैष्णव बना दिया। उन्होंने सनातन गोस्वामी को वहां लगातार 2 महीने उपदेश दिए। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में सनातन शिक्षा के नाम से ये बड़ा प्रसिद्ध है। बहुत ही गहराई में उनको ज्ञान दिया उन्होंने। प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी दशाश्वमेध घाट पर, तो इसका भी वर्णन मध्य लीला में आता है। महाप्रभु ने जगह जगह जाके लोगों का परिवर्तन किया। जब वो दक्षिण भारत में गए थे तो वहां पर उन्होंने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए, उनका वर्णन भी संक्षिप्त में कविराज गोस्वामी करते हैं। और जितने भी तीर्थ स्थानों में महाप्रभु गए थे, गौड़ीय वैष्णव भी अवश्य जाते हैं उनके उनके चरण चिन्हों के पीछे पीछे पीछे, जहां भी महाप्रभु गए थे। श्रीरंगम में उन्होंने वेंकट भट्ट को भी गौड़ीय वैष्णव बना दिया और उनके पुत्र आगे चल के वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक बने। उनका नाम क्या था? गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इस प्रकार से उन्होंने सब जगह लोगों को कृष्ण भावना भावित बना दिया और लौट के आ गए। तो उनके भ्रमण के दौरान उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी लीलाएं की, किन किन का उद्धार किया, किन किस साथ में कैसे संवाद हुआ, जैसे रामानंद राय के साथ में संवाद हुआ विद्यानगर में गोदावरी के तट पे, वेंकट भट्ट के साथ में संवाद हुआ श्रीरंगम में, जो मध्वाचार्य संप्रदाय के आचार्य हैं उनके साथ संवाद हुआ उडुपी में, ऐसे कई संवाद, इनका इन संवादों का वर्णन कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला के अंतर्गत किया हुआ है। साथ साथ जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, जब दक्षिण भारत से लौट के आए और फिर वृंदावन जाने के पहले और आने के बाद, तो वहां उन्होंने रह के कौन सी लीलाएं की, इनका भी वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। और विशेष करके उनकी रथ यात्रा की लीलाएं, इनका वर्णन महत्वपूर्ण है। महाप्रभु ने रथ यात्रा में कैसे कीर्तन किया, किस प्रकार से दर्शन करते, वो उनका भाव क्या था, और ये बहुत ही गूढ़ तत्व है कि महाप्रभु जगन्नाथ को किस दृष्टि से देखते थे और जगन्नाथ रथ यात्रा को किस दृष्टि से देखते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हम सबको समझना चाहिए, जबकि जो कि हम मध्य लीला में पहुंचने के बाद विस्तार में कर सकेंगे। और कई श्लोकों का उच्चारण करते थे वो जगन्नाथ का दर्शन करते करते, और इन सबों का वर्णन जो है महाप्रभु कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला में किया हुआ है। तो ये मध्य लीला 6 वर्ष तक हुई और इसलिए ये काफी लंबा है। कविराज गोस्वामी ने बहुत ही विस्तार में लिखा है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी टीकाएं भी लिखी हैं। और उसके बाद जब 6 वर्ष समाप्त हुए, उसके बाद महाप्रभु कभी जगन्नाथपुरी छोड़कर नहीं गए। तो इसको अंत लीला कहते हैं। और उस दौरान महाप्रभु ने क्या किया, जरा पढ़िएगा। तो अपने ही आचरण से अंत लीला के दौरान महाप्रभु ने सिखाया कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान के विशेष अवतार हैं जो कि भक्त के रूप में आए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक अध्यापक एक बच्चे को अक्षर लिखाना सिखाता है, अ आ ई ई इत्यादि अपने हाथों से लिख के, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने भक्त का रूप धारण करके हम सबको सिखलाया है कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब अध्यापक अ आ ई ई लिख रहा है कि अध्यापक भी सीख रहा है, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अध्यापक तो पहले से आईई अच्छी तरह से मालूम है, केवल बच्चे की सुविधा के लिए वो धीरे धीरे लिख रहा है अ और आ इत्यादि। तो जो पहली बार देख रहा है, हो सकता है कि उसे गलत फहमी हो जाए कि ये भी सीख रहे हैं आई लिखना। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए वो भी एक साधारण भक्त ही है, नहीं, वो तो साक्षात भगवान है। केवल हम सबको सिखलाने के लिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने आचरण से सारी दुनिया को भक्ति कैसे करना है ये सिखा रहे हैं। तो अंत लीला में भगवान ने यही बस किया और इस अंत लीला में अर्थात 18 साल में भी दो भाग हैं। कौन से दो भाग हैं पढ़िएगा। अंत लीला में कितने वर्ष कुल मिलाकर 18।
प्रथम 6 वर्ष और अंतिम 12 वर्ष।
तो प्रथम 6 वर्ष में महाप्रभु ने क्या किया? भक्तों के संग में श्रवण और कीर्तन करते हुए बिताए लगातार रथ यात्रा में। रथ यात्रा में वो रहे और जगह जगह कीर्तन करना, सुबह से रात बस यही था उनका कार्य। सारे भक्त इकट्ठे आते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए। कभी कोई कृष्ण कथा होती, कभी कीर्तन होता, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन होता। सारा दिन ऐसे बीतता। कब कोई उत्सव होता और उसके बाद अंतिम जो 12 वर्ष हैं अंत लीला के, उसमें भगवान ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने में बिताए। किस भाव में? वहां लिखा है विरह, विरह के भाव। विरह के भाव का आस्वादन उन्होंने बहुत ही तीव्रता से और गहराई से किया। विशेष करके इन अंतिम 12 वर्षों में वो ज्यादा अपने अंदर की दुनिया में ही रहने लगे। उस समय केवल अपने जो बिल्कुल निकट के पार्षद थे उन्हीं के साथ में रहा करते थे। जैसे कौन थे ये निकट के पार्षद? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। विशेष करके ये दो पार्षद थे महाप्रभु के साथ में, जबकि वो श्रीमद् भागवत, कृष्ण कर्णामृत और अन्य ग्रंथों के रसमय श्लोकों का पूरा पूरा स्वाद लेते थे। और ये दो भक्त महाप्रभु की सहायता करते थे, उनको इन श्लोकों का स्वाद दिलाने में, इस विरह के भाव का आस्वादन करने में सहायता करते थे। तो अंतिम लीला, जो अंत लीला का जो अंतिम भाग है, जो 12 वर्ष है, इसमें महाप्रभु प्रतिदिन अंदर 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 जाते गए और इतने भाव विभोर होते रहते, इतने प्रेमावेश में जाते कि कभी कभी उनको घंटों तक कुछ बाहरी चेतना नहीं रहती, अपनी अंदर की चेतना में बिल्कुल वो रहा करते थे। तो उस समय वो दिव्योन्माद का अनुभव करते थे। दिव्य उन्माद, एक दिव्य पागलपन। एक साधारण व्यक्ति जब ऐसे व्यवहार करेगा तो उसे पागल कहा जाएगा, परंतु महाप्रभु जिन लक्षणों को प्रकट किया वो दिव्य उन्माद है। कृष्ण प्रेम की ऐसे अवस्था को उन्होंने प्रकट कराया जो अन्य किसी के लिए भी संभव नहीं है सिवाय श्रीमती राधा रानी, साक्षात श्रीमती राधा रानी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन? वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि राधा रानी के भाव और उनकी कांति को स्वीकार करके आए हैं। इसीलिए भगवान ने जब महाप्रभु का रूप धारण किया, स्वीकार किया, तो इस रस का स्वाद लेने के लिए किया। तो इस प्रकार से महाप्रभु की समस्त लीलाएं हुई। विशेष करके आदि लीला में इन लीलाओं का वर्णन आता है, जब कैसे उनका आविर्भाव हुआ, उनकी बाल्य लीला, उनकी पौगंड लीला, कैशोर लीला और यौवन लीला। बाल्यावस्था कितनी उम्र तक होती है? 5 साल की आयु तक। तो इसका वर्णन कविराज गोस्वामी ने केवल एक अध्याय में किया है, 8वें अध्याय में। 7वें अध्याय में या उन्होंने आविर्भाव का वर्णन किया है, फिर उन्होंने बाल लीला 1 अध्याय में किया है, संक्षिप्त में समाप्त कर दिया, क्योंकि कब वृंदावन दास ठाकुर ने तो किया ही था बड़े विस्तार में। पौगंड लीला कौन सी आयु तक होती है? 5 से लेकर 10 तक। इसके लिए भी 1 अध्याय में कविराज गोस्वामी ने लीला का वर्णन किया है। उसके बाद कौन सी अवस्था है? कैशोर अवस्था। कैशोर अवस्था कौन से आयु, कौन से उम्र से कौन सी उम्र तक है? 10 या 11 से लेकर 15 साल तक। और उसके बाद युव अवस्था, यौवन, यौवन लीला आरंभ होता है। तो किशोर अवस्था के लिए भी एक अध्याय कविराज गोस्वामी ने आदि लीला में रखा है। उसके बाद यौवन लीला का वर्णन भी एक अध्याय में करते हैं। लेकिन इसके पहले आदि लीला में कुल मिलाकर 17 अध्याय हैं, परंतु लीलाओं का वर्णन केवल 5 अध्याय में है, 13 से 17। पहले 12 जो अध्याय हैं, उनमें कविराज गोस्वामी ने बहुत से सिद्धांत बतलाए हैं, बड़े गहराई में जाके बड़े निपुणता से उन्होंने ऐसे विश्लेषण किया है परम सत्य का कि और शायद किसी भी ग्रंथ में न किया हो। इसलिए आदि लीला के पहले 12 जो अध्याय हैं, वो काफी दर्शन से भरे हुए हैं, फिलॉसफी से भरे हुए हैं, तत्व से भरे हुए हैं। इसलिए पहले 12 अध्यायों को पढ़ने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, हमें समझने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी। ये जो 12 अध्याय हैं आदि लीला के, ये वास्तव में सारे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के लिए एक आमुख है। आमुख समझे ना, आमुख प्रीफेस, मतलब एक बैकग्राउंड दे रहे हैं, इतिहास दे रहे हैं कि भाई ऐसे समझना चाहिए, सिद्धांत के आधार पर हमें भगवान की लीलाओं को समझना चाहिए। समस्या ये होती है भगवान कृष्ण को समझने के लिए भी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते, अच्छी तरह से ये नहीं समझते हैं कि कृष्ण हैं कौन, और सीधे कृष्ण लीला तक पहुंचते हैं और फिर भगवान की निंदा करते हैं कि इन्होंने रासलीला की, इन्होंने ऐसे किया वैसे किया, उन्होंने राजनीति की। सीधे लीलाओं को जाके समझने का प्रयास करते हैं और अपने भौतिक दृष्टि से भगवान के लीलाओं को देखने के कारण और तत्व ज्ञानहीन होने के कारण वो ऐसे गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं। तो लीला समझने के पहले तत्व का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम लीला को समझ पाएंगे। तो इसलिए कविराज गोस्वामी ने पहले 12 अध्यायों में केवल तत्व का वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन। ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं साक्षात, ये भगवान के अवतार हैं जो कि युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, और कलयुग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का भीतरी कारण है कि वो श्रीमती राधा रानी के भक्ति भाव का स्वाद लेना चाहते हैं, और अपने ही अंदर जो गुण है, दिव्य गुण है, जिनका स्वाद श्रीमती राधा रानी ले रही हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहते हैं भगवान खुद। और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु हैं और अद्वैत आचार्य हैं, पंच तत्व है, हम पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र को बोलने के पहले, तो ये पंच तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, भगवान भगवत तत्व क्या है, पंच तत्व क्या है, इन सारे तत्वों का वर्णन बड़े विस्तार में कविराज गोस्वामी ने किया है। और ऐसे 12 अध्याय तक करने के बाद फिर वो 13वें अध्याय में फिर महाप्रभु के आविर्भाव की लीला शुरू करते हैं वर्णन करना। तो इसमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि सीधे भगवान की लीलाओं को नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए, पहले भगवान के तत्व को जान लेना चाहिए, फिर लीलाओं को हम सही तरह से समझ पाएंगे। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो भलीभांति तत्वतः ये जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, उसे पुनः यहाँ जन्म लेना नहीं पड़ता, बल्कि वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु की लीलाओं को सुनना तो बहुत आसान है, कोई भी सुन सकता है, सुनना भी चाहिए। परंतु जो भक्त हैं, जो बड़े गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भक्ति में बहुत सीरियस हैं, गंभीर है, वो चाहते हैं कि हम इसी जन्म में शुद्ध भक्त हों, तो उनको तत्व ज्ञान भी होना चाहिए और साथ साथ लीलाओं का श्रवण भी करना चाहिए। तब उनका लीला श्रवण जो है वो पूरी तरह से फल प्रदान कर पाएगा। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने, क्षमा कीजिए, कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण के कई श्लोकों की रचना की है। आप तो जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जब कोई भी रचना की जाती है, कोई नाटक लिखा जाता है, कोई कविता लिखी जाती है, कोई ग्रंथ लिखा जाता है, कुछ भी, तो मांगल्य के आह्वान करने के लिए मंगलाचरण श्लोक पहले कहे जाते हैं। यहां तक कि एक प्रवचन देने के पहले भी ऐसे मंगलाचरण बोला जाता है। हम कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ये सब मंगलाचरण के श्लोक है। प्रवचन शुरू करने के पहले ये करना होता है, ये एक पद्धति है वैदिक संस्कृति में। इसलिए चैतन्य चरितामृत तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसकी शुरुआत करने के पहले भी कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है। और इस मंगलाचरण में कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोक लिखे हैं और इनके बाद और भी 3 श्लोक हैं, तो कुल मिलाकर 14 और 3 तो 17 श्लोक हैं जो मंगलाचरण कहे जाते हैं। और फिर ये जो 14 श्लोक हैं, उन्होंने हरेक अध्याय में हरेक श्लोक को के ऊपर व्याख्या करने के लिए एक एक अध्याय लिया है पूरा। तो केवल पहले श्लोक का वर्णन उन्होंने पहले अध्याय में किया। और इस प्रकार से जितने भी मंगलाचरण के श्लोक हैं, पहले अध्याय में उन्होंने केवल श्लोकों का उच्चारण किया, श्लोकों को लिखा, फिर हरेक श्लोक की व्याख्या बड़े विस्तार में उन्होंने आने वाले अध्यायों में किया है। ऐसे करके 8वें-9वें अध्याय तक वो पहुंच गए, हम आगे चल के भी देखेंगे। परंतु पहले अध्याय में उन्होंने केवल पहले श्लोक के ऊपर उन्होंने वर्णन किया हुआ है, व्याख्या की है पहले श्लोक के ऊपर, जो गुरु तत्व के ऊपर है। तो मंगलाचरण ये क्या चीज है? कविराज गोस्वामी यहाँ स्वयं बताते हैं कि मंगलाचरण किस प्रकार की होती है और क्यों लिखा जाता है। मंगलाचरण जो है, इसके 3 प्रकार होते हैं या 3 उद्देश्य होते हैं, आप समझ लीजिए। तो 3 उद्देश्य क्या है? पहला वस्तु निर्देश, दूसरा आशीर्वाद और तीसरा नमस्कार। ये आदि लीला के पहले अध्याय का 22वां श्लोक है। तो आप आश्रम में या घर में जाके पढ़ सकते हैं। आप में से कितने भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत है अपने अपने घर में या में? है ना सबके पास? अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। तो यह आदि लीला के पहले अध्याय के 22वें श्लोक में कविराज गोस्वामी ने कहा है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मांगल्य का आह्वान करने के लिए इसके 3 उद्देश्य होते हैं। एक है वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश मतलब हमारे उद्देश्य का स्पष्टीकरण करना, हम किस वस्तु को समझना चाहते हैं, किस वस्तु के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, किस विषय के ऊपर व्याख्या करना चाहते हैं इसका स्पष्टीकरण होता है। दूसरा उद्देश्य होता है आशीर्वाद, भगवान का, सज्जनों का आशीर्वाद हम सब पर। जो वक्ता होते हैं या जो रचयिता होते हैं, लेखक होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा सब श्रोताओं के ऊपर हो, हम सब के ऊपर हो, ये आशीर्वाद। और तीसरा है नमस्कार। नमस्कार मतलब नमहकार, भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में वंदना करना, जो नमस्कार करना, प्रणाम करना। तो इस प्रकार से मंगलाचरण के ये तीन उद्देश्य होते हैं। अब बताइए मंगलाचरण के कौन से तीन उद्देश्य हैं? पहला वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश का मतलब क्या है? कोई एक बताइए हाथों पर करके। हाँ बताइए। जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं लेखक या प्रवक्ता, उस विषय का स्पष्टीकरण करना कि हम इस विषय के ऊपर बोलने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, ताकि शुरुआत में ही हमें पता चले कि चर्चा किस बारे में होने वाली है। वैसे हम देखते हैं कि ऐसे कई ग्रंथ हैं इसमें अंत में भी पता नहीं चलता कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल के हिसाब से ऐसे ग्रंथ लिखे जाते हैं, सारा किताब पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, कभी घुमा के कभी फिरा के ऐसे बस बोल रहे हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसे नहीं है। संस्कृत साहित्य में बड़े अच्छे नियम होते हैं, हर कुछ ढंग से किया जाता है, एक पद्धति होती है हर चीज के लिए। आजकल की तरह नहीं, जिसको जो लिखना जैसे मन में आया लिख दिया, ऐसे नहीं है। ये भी कला है और इसमें नियम है। जैसे वैदिक संस्कृति के हर एक भाग में एक नियम होते थे, यहां तक कि नृत्य के लिए भी कितने नियम, कविता के लिए नियम। आजकल तो नृत्य क्या, कोई भी कैसे भी नृत्य कर लेता है, वो हो जाता है। या कोई भी किसी भी प्रकार की कविता लिख देता है, किसी भी प्रकार का उपन्यास लिख देता है, किसी भी प्रकार का लेख लिख देता है। कोई नियम नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई मंगलाचरण नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वैदिक साहित्य में ऐसे बताया जाता है कि सबसे पहले आप श्रोतागणों को यह जानकारी दिलाओ कि आप किस विषय में चर्चा करने वाले हैं और क्यों। जब पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ अभी ये विषय है और आगे इस प्रकार से लेखक जो है इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो पढ़ने वालों का मन जो है शांत हो जाता है कि हाँ इस प्रकार से आगे बात बढ़ेगी। दूसरा उद्देश्य क्या है मंगलाचरण का? आशीर्वाद। क्या है आशीर्वाद? मतलब किनका आशीर्वाद? भगवान का और वैष्णवों का और गुरुजनों का आशीर्वाद। किनके ऊपर चाहिए? लेखक स्वयं अपने लिए भी चाहते हैं और जो भी श्रोतागण है उनके लिए भी चाहते हैं आशीर्वाद। और तीसरा उद्देश्य क्या है मंगलाचरण का? नमस्कार। किनको नमस्कार करते हैं? भगवान और वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करते हैं। तो ये है मंगलाचरण के तीन उद्देश्य। तो ऐसे मंगलाचरण के 17 श्लोक हैं। पहले 17 श्लोक जो चैतन्य चरितामृत के हैं वो इस प्रकार से हैं। और मंगलाचरण के सबसे पहले श्लोक में वो चैतन्य कविराज गोस्वामी जो हैं, गुरु और भगवान और उनके विभिन्न तत्वों के प्रति वो नमस्कार करते हैं। वैसे इस श्लोक के ऊपर आज विस्तार में चर्चा करने के लिए समय नहीं होगा।
श्लोक पढ़ेंगे और उसका अनुवाद पढ़ेंगे और
वंदे गुरुनीश भक्तान ईशाम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य सम्यकम् वंदे गुरुनीश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य सम्यकम् पढ़िएगा द्वारा अनुवाद। मैं समस्त गुरुओं भगवत भक्तों भगवान के अवतारों उनके अंशों उनकी शक्तियों तथा आदि भगवान साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से यहां सबसे पहले नमस्कार मंगलाचरण में एक उद्देश्य नमस्कार है ना, तो यहाँ पे नमस्कार कर रहे हैं किनको? छह तत्वों को नमस्कार कर रहे हैं। कौन से छह तत्व हैं? कहते हैं वंदे गुरुन। गुरुन मतलब बताइए।
मन का अंधकार दूर करने वाले।
हाँ हाँ, गुरु जनों का बहुवचन में है ये। केवल गुरु गुरुन, गुरु मतलब बहुवचन। तो बहुवचन में क्यों कह रहे हैं, एक वचन में क्यों नहीं कह रहे हैं, इसके बारे में अगली बार सुनेंगे। अर्थात वो कह रहे हैं गुरु जनों की बात कर रहे हैं, वो केवल एक व्यक्ति गुरु की नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो अब गुरु तत्व की व्याख्या होगी अगली बार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ ईश भक्तान, ईश मतलब भगवान, तो भगवान के भक्तों को भी वो नमस्कार करते हैं। तीसरा ईशाम, स्वयं भगवान को। फिर ईश अवतारकान, जो भगवान के अवतार हैं उनको नमस्कार करते हैं। तत्प्रकाशांश मतलब उनके जो अंश हैं उनको भी नमस्कार करते हैं। और तत्शक्ति ही, उनकी शक्तियों को नमस्कार करते हैं और फिर साथ साथ में स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे इन्होंने जब वर्णन किया है ऐसे अभी हरेक के बारे में आगे चल के वो विश्लेषण करने वाले हैं। प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कही है। जिन आप में से जिनके पास चैतन्य चरितामृत है आप आने वाले दो तीन दिनों में आप पढ़ लीजिए ताकि अगली बार जब मंगलवार को आप आएंगे तो विषय अच्छी तरह से आपके मन में बैठ जाएगी। तो इस श्लोक के ऊपर जो कि मंगलाचरण का पहला श्लोक है व्याख्या इस पहले अध्याय में है। फिर दूसरे और तीसरे श्लोक का अनुवाद या व्याख्या जो है उसके बाद वाले अध्याय में है, दूसरे अध्याय में है। ऐसे करके जब तक हम 12वें श्लोक तक पहुंचेंगे तो इन 17 श्लोकों का जो की व्याख्या जो है हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर आदिलीला के 13वें अध्याय से भगवान की लीलाओं का वर्णन आरंभ हो जाएगा। हरे कृष्णा, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो आप कोई आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद ने ऐसे भी कहा है कि चैतन्य चरितामृत जो है वो श्रीमद् भागवत से भी आगे है या पहले गीता पढ़ के भागवत पढ़ के फिर चैतन्य चरितामृत पर पहुंचना चाहिए या तो फिर हम सीधे चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं, क्या हमारे लिए उचित है? वैसे प्रभुपाद जी भी यहां कई बार कह चुके हैं कि चैतन्य चरितामृत जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब बीए के बाद बीए बीएससी के बाद भी जो किया जाता है। भगवद गीता विद्यालय के स्तर पर है, श्रीमद् भागवत विश्वविद्यालय के स्तर पर है और जो चैतन्य चरितामृत है वो उससे भी ऊपर पीएचडी। फिर भी अगर हम रोज भागवत क्लास सुनते हैं, हम मंदिर में आके गीता भी सुनते हैं, घर में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो चैतन्य चरितामृत सुनने में और समझने में पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये लाभदायक होगा। परंतु साथ साथ हमें गीता और भागवत का ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें रोज पढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो आसानी से हम चैतन्य चरितामृत भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाँ जी, आपके पास प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं?
मेरे पास एक जैसे मैं अभी जो आज लिए हैं, मैंने
जी
भागवत मेरे पास रखी है।
अच्छा,
और बाकी मैं चैतन्य चरितामृत अभी मैं लूंगा।
तो बस अभी आप पढ़ लीजिएगा, शुरुआत कीजिए भगवत गीता से यथारूप, और प्रभुपाद जी के अन्य कई ग्रंथ हैं उनको आप पढ़िएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ही इन ग्रंथों के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी, बाएं तरफ से क्यों करते हैं? नहीं, ऐसे विधियां भी हैं अलग अलग। बाएं तरफ से करते हैं भगवान को, दाहिनी ओर से करते हैं जो भगवान नहीं है, जो देवता हैं उनको करना है तो ऐसे करते हैं। ऐसे नियम है, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है, इसलिए बाएं ओर से किया जाता है। ऐसे वैष्णवों में ये पद्धति है, इसलिए भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो ज्यादातर बाएं ओर से हम करते हैं। सीधा भी ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है कि सीधा प्रणाम करने से कई मंदिरों में, विशेष करके जो प्राचीन मंदिर हैं पुराने, उनमें भगवान के कोई भक्त भगवान के ठीक सामने होते, उनकी मूर्तियां, जैसे गरुड़ जी हैं या हनुमान जी हैं, या कभी कभी हमारे मंदिरों में प्रभुपाद जी भी होते हैं, तो फिर सीधे जो है पैर उनकी ओर जाता है। हम जब दंडवत कर रहे होते हैं तो मुख्य कारण तो यही है कि शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि भगवान को प्रणाम करते समय बाएं ओर उनकी ओर होना चाहिए, एक भेद करने के लिए भगवान और देवताओं में। नहीं तो आदमी दोनों को एक समान समझेगा कि भगवान भी एक देवता है। भगवान देवता नहीं है, भगवान तो साक्षात भगवान है, देवता भगवान नहीं है, वो तो भगवान के अंश है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए ऐसे प्रणाम करने की विधि भी अलग की गई है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।